It ended yesterday, celebration of 25 years, and we thank God for that. But good thing that the Sunday has come, and it has given us the opportunity to be together for one more morning and evening message. And I'm so glad. Some of you would have had a heavy day with the meetings in your own church, and you've come here to hear the Word of God. Now, I would request you to please pray. Pray in your heart that God will bless both of us as we minister the Word. Say.
प्रभु ने हमें एक और अवसर दिया इस प्रकार का सभा के रूप में इकट्ठा होने के लिए. हमारा जो विशेष सभाएं कल समाप्त हो गया तो भी एक संडे का जबर सुबह का सभा में मिला और आज शाम को फिर से आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए हैं. आप सबको स्वागत करते हैं प्रार्थना में.
And I want to give you a message on John chapter, beginning from John chapter 14.
योहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का शुरुआत के कुछ वचनों से हम मनन करेंगे. योहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय.
Yeah. Now the best thing to do is to read a few lines in John 14, first to get our focus and attention on the word of God.
कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे ताकि हम उन वचनों को बराबर समझ सकें.
Now, John chapter 14. Now, what I want to say before even reading is this.
ये जो वचनों को पढ़ने के पहले ही मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ.
In the New Testament,
सुसमाचार नया नियम में.
If you want a chapter on faith,
विश्वास के ऊपर जो अध्याय को देखना है.
Which is it?
Hebrews
chapter 11.
इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय.
If you want a chapter on love,
प्रेम के ऊपर कौन सा अध्याय है?
1 Corinthians chapter 13.
पहला कुरिन्थी 13वां अध्याय.
These are easily done, but this next one will present a little difficulty. If you want to have a chapter on hope, which will it be?
आशा के ऊपर कौन सा अध्याय हमको मिलता है?
Thessalonians. John 14.
Lord is coming. I'll tell you. If you want a chapter on hope, I believe that the hope of the resurrection is the most important thing concerning the hope, and you find it in chapter 1 Corinthians chapter 15. Yes,
brother. आशा यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर आधारित है, इसलिए वो पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय में मिलता है.
All right. Then you got then faith, hope and love.
इस प्रकार विश्वास, प्रेम और आशा का अध्यायों को हमें मिलता है.
Which is the chapter on comfort?
लेकिन तसल्ली के ऊपर कौन सा अध्याय को मिलता है?
John chapter 25. John 14. That's your right. It's John chapter 14. I believe it's a chapter on comfort, and may the Lord bring His word to you tonight through the Holy Spirit.
मैं विश्वास करता हूँ योहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय तसल्ली के ऊपर है. मैं आशा करता हूँ आज हमें हर एक दिन में तसल्ली मिले.
When you read chapter 14,
14 अध्याय का पढ़ाई करते समय,
let's take a look at verse 27.
उसका 27वां पद को देखेंगे.
Right? Verse 27.
27वां पद.
Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे.
This is comfort in conflict.
ये संकट के बीच में तसल्ली है.
Look at John chapter 14, verse 16 to 18.
का 16वां, 17वां, 18वां पद देखिए.
Yes, read, brother.
मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो उनसे वो न उसे देखता और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हें होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ।
दिस इज कम्फर्ट इन पर्सन,
ये है तसल्ली एक व्यक्ति के द्वारा हमें मिलता है।
ओके, एंड दैट इज द होली स्पिरिट,
वो पवित्र आत्मा है।
नाउ द थर्ड पोर्शन इज जॉन चैप्टर 14 1 to 3, you don't even need to look at your Bible.
आप 14 अध्याय का 1 से लेके 3 पद आप जानते हैं अच्छी तरह।
Look at me.
मुझे देखिए।
Let not your heart, come on everybody, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house, God derailed. Some of them were trying to lip read, you know, looking at me the way my mouth is moving. They were trying to say that. Never mind, don't worry about it. John chapter 14, 1 to 3, look at your Bible now.
अभी आपका बाइबल में देखिए, पढ़िए।
Let not your heart be read with me.
Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. That's enough. Full stop. Isn't that lovely? And that is comfort in His coming.
ये है तसल्ली यीशु मसीह के आगमन के संबंध में।
Did you notice the three passages of scripture that I read?
आपको याद है तीन जगह से हमने पढ़ा।
Did you notice? John chapter 14. All right, start from the other side now. John chapter 14, 1 to 3.
अभी हम एक से लेके पदों को देखेंगे।
1 to 3. Then you went to John chapter 14, 16 to 18.
पहले एक से लेके तीन तक, बाद में 16 से लेके 18 तक।
This is progressive. Then you went to the third part, which was first read before, and that is 14:27.
और अंत में 27 पद को पढ़ेंगे।
Now you know, take a look at chapter 14, verse 1 to 3.
अभी 14 एक से लेके तीन पदों को देखिए।
What we saw there is, let not your heart be troubled.
तुम्हारा मन व्याकुल ना हो।
And it's comfort.
ये है तसल्ली, really? आश्वासन देते हैं।
It's like speaking comfort to your heart.
आपके हृदय को सहारा देते हैं तसल्ली।
Three times over he's mentioning.
तीन बार प्रभु यीशु मसीह ये बता।
Let not your heart be troubled.
तुम्हारा मन व्याकुल ना हो।
And in chapter 14, 1 to 3, a very chapter 14, 1, very simple way he's saying, let not your heart be troubled.
बहुत
believe in God. Believe also in me.
बहुत ही सरल रीति से यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो।
Believe,
विश्वास करना।
Believe,
विश्वास करना।
That's what he say.
बार-बार कहते हैं।
In verse, simple talk and telling you, I'm just telling you simply, just believe.
वो सरल रूप से कहते हैं कि विश्वास करो।
And you'll be comforted.
आपको तसल्ली मिलेगी।
When you come to chapter 14.
14 अध्याय में आप आते हैं।
And verse 16, 16 to 18,
16 पद से 18 पद।
But the same thing,
वही बातें हैं।
And that is about comfort,
ये भी तसल्ली है।
But there is an increment of words,
उसमें कुछ फर्क है।
That means more number of words,
शब्दों को ज्यादा देखता।
Not as short as verse 1.
जैसा पहला पाप में देखते हैं वैसा नहीं।
Look at what God, the Lord Jesus said.
यीशु मसीह ने क्या बोला?
I will pray the Father.
मैं पिता से विनती करूंगा।
He will give you another comforter.
वो तुम्हें एक और सहायक देगा।
All right? He will give you another comforter.
एक और सहायक देगा।
And he will, that he may abide with you forever.
वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे।
Who is he?
वो कौन है?
Verse 17, he is the spirit of truth.
17वां पद में पढ़ते हैं वो पवित्र आत्मा है.
The world does not know, the world cannot receive.
संसार नहीं जानता, नहीं पा सकता.
You know him.
आप जानते हो.
And you have received him.
और तुम पाए हो उसको.
And he, because you know him, because he dwells in you.
तुम पूरे जानते हैं क्योंकि वो तुम्हारे अंदर वास कर रहा
है. And he will be, shall be in you.
और तुम्हारे अंदर होगा.
You remember yesterday I explained that.
आपको याद है कल मैं बताया आपको.
What I said is he dwelleth in you. That's present tense.
वो आपके अंदर वास कर रहा
है. Dwelleth with you.
आपके साथ वास करते हो. वर्तमान काल में कहा.
And then I also pointed out the preposition there, and that is dwelleth with you.
और हमने ये भी कहा कि वो आपके साथ रहते हैं.
All right. And I pointed out that when he says with you, the next sentence he says in you.
और साथ रहते हैं बोलते हैं.
Take a look.
With बोलते हैं.
Take
under
your Bible.
आपकी Bible देखिए.
Am I saying it correctly or not?
आप वहाँ ऐसा लिखा है 17वां पद का अंतिम भाग में.
He dwelleth.
वो तुम्हारे साथ रहता है.
With you.
वो तुम्हें होगा.
Alright. The next sentence is
shall be in you.
And shall be, that is a future.
और वो तुम्हें होगा.
Now dwell, he dwelleth with you, and shall be where now?
वो तुम्हारे साथ अभी है.
Not with you.
वो तुम्हें होगा.
He shall be in you. Shall be. And I told you yesterday, why does he use the future tense for Holy Spirit being in you?
और मैं कल बताया कि पवित्र आत्मा आपके अंदर होंगे. ऐसा क्यों बोला यीशु मसीह ने?
That's because the Lord Jesus Christ had not died as yet.
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ नहीं.
He wasn't buried as yet.
और यीशु मसीह का दफन नहीं हुआ.
He hasn't risen again.
यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ.
The veil of the temple was not yet torn.
मंदिर का पर्दा टूट गया, तोड़ा नहीं.
When he was on the cross, the veil of the temple.
और यीशु मसीह जब सूली पर था, वो जो मंदिर का पर्दा फट गया.
That veil that was hiding the presence of God.
और जो पर्दा परमेश्वर की उपस्थिति को छिपाता था.
Nobody could pass that.
कोई भी वो जो पर्दा की ओर से जा नहीं सकता था.
Only one man.
एक ही व्यक्ति जा सकता.
And that is the high priest.
वो महायाजक.
No, if you go there, you just simply die.
यदि आप जाएंगे तो मर जाएंगे.
But God has torn that veil when He tore His Son apart.
लेकिन परमेश्वर का पुत्र का मृत्यु के समय वो जो पर्दा फट गया, परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता खोल कर दिया.
What a beautiful thing!
इतना सुंदर बात.
And that is what I'm saying here, okay?
वही बात यहाँ पर
है. Verse 16 to 18, you have got an increment of words, and the word comfort comes more than once.
यहाँ 16 पद से 18 पद से कई पद हैं और बार बार तसल्ली का शब्द मिलता है.
Look at verse 16.
16 पद को देखो.
What you've got there is,
वहां क्या लिखा है?
I will pray the Father and you tell me the rest.
और बताइए, मैं पिता से विनती करूंगा.
He will give you another comforter.
और तुम्हें एक सहायक देगा.
Now in the He will give you another comforter. When you say another, what do you mean? What does it imply?
जब एक और मतलब क्या होता?
There is already one.
एक और मतलब आपके साथ सहायक एक है.
If there is already one, who is that one?
वो कौन है?
The Lord Jesus Christ.
वो यीशु मसीह है.
But he is saying again and again to Peter and James and John and all that, I'm going, I'm going, I'm going, and these men are saying, where are you going?
ये बार बार यीशु मसीह पतरस से कहा, शिष्यों से कहा, मैं जाता हूँ, जाता हूँ. वे पूछने लगे, आप कहाँ जा रहे
हैं? You see, they were getting discouraged.
वे बहुत निराश हो गए.
No, no, I'll pray the Father.
यीशु ने कहा, नहीं, मैं प्रार्थना.
And he will give you another comforter.
पिता आपको एक और सहायक देगा.
Who will abide with you?
जो आपके साथ सर्वदा रहेगा.
Wait a minute. You know, yesterday morning, some of you didn't come, but I was explaining on the screen here. He will give you another
कल मैं ये बात तो बताया कि वो आपको एक और सहायक दे
रहा है. That word in English, another, is a translation of two Greek words.
यहाँ जो शब्द है एक और, वो दो अलग अलग यूनानी भाषा का भाषांतर है.
One Greek word which for which we say another is the word what's that word now? Yesterday I told you. Not Paracletus. One is allos, the other is heteros.
दो यूनानी भाषा है, दो यूनानी भाषा.
जैसे heteros means
जो पहला शब्द का हेटरो.
Give me another.
मुझे एक और दीजिए.
Another kind.
और प्रकार का दीजिए.
A different one.
एक अलग प्रकार का.
That's what he's saying. That is the word.
वो heteros.
Like now then. You go back again. You got another word called allos.
लेकिन एक allos नाम है.
And that word is give me another of the same kind.
वो शब्द का मतलब ये है मुझे दूसरा दीजिए जो पहले दिया उसी प्रकार का.
Exactly the same kind.
जो पहले मिला उसी प्रकार का एक और दीजिए.
So allos means another of the same sort.
Allos शब्द का मतलब ये है कि एक और उसी प्रकार.
What does the Lord Jesus mean?
तो यीशु मसीह का मतलब क्या है?
I'm praying.
मैं पिता से विनती करता हूँ.
He will give you another just like me.
वो आपको एक और सहायक देगा जो मेरे समान है.
But the difference will be.
फर्क ये है.
Verse 17.
17 पद में.
We look at the last part.
उसका अंतिम भाग देखिए.
What is the difference?
फर्क क्या है?
He dwells with you and shall be
in you.
At that point of time when he is talking to the disciples, Christ could not be in them.
तुम्हारे साथ रहता है वो तुम्हें होगा लेकिन यीशु मसीह उनके उनमें नहीं है उस समय.
Once he has died,
लेकिन यीशु मसीह एक बार मरा.
And he shed his blood.
और यीशु मसीह सूली पर उसका
लहू. And the veil of the temple was rent.
और मंदिर का पर्दा फट गया.
The blood of Jesus Christ accounted for all of our sins.
हमारे सारे पापों के प्रति यीशु मसीह का लहू बहाया.
That is the time when God the Father removed our sins from us as far as the east is from the west.
उस समय परमेश्वर पिता ने हमारे पापों को जैसा पूर्व पश्चिम से दूर है वैसा हटाया दूर कर.
That is the time when our sins were covered.
उसी समय हमारे पापों के ऊपर पापों को छिपाया.
That is the time when His blood was shed. Then when God took all our sins and cast it behind His back.
हमारे सारे पापों को उसके बाहर दूर कर दिया.
And that is the time when God the Father took all our sins and cast it into the depths of the sea.
उसी समय समुद्र की गहराई में हमारे पापों को डाल दिया.
That is the time when God the Father cancelled the debt.
हमारा सारा कर्ज को उसने कैंसिल कर दिया उस समय.
Now you get all the points.
आपको पूरा आइडिया मिला.
That's what it is.
वो है यीशु मसीह का सूली का मृत्यु का फल.
And when at the end of chapter, what is that now? Whichever chapter it is in John, we read it is. What did the Lord Jesus say on the cross?
It is.
What is finished? The work that the Father has given.
यीशु मसीह उस समय सूली पर से ऐसा बोला कि पूरा हो गया.
The work of redemption and salvation.
छुटकारा उद्धार का कार्य पूरा हुआ.
The work of standing between a holy God and a sinful man.
पवित्र ईश्वर और मनुष्य पापी मनुष्य के बीच में करने का काम समाप्त.
It is finished.
वो पूरा हो गया.
When God's judgment fell upon my head, Christ says,
यीशु मसीह बोलते हैं जब परमेश्वर पिता का जो दंड न्याय उनके ऊपर गिरता है.
The responsibility of your sin.
आपका पापों का जिम्मेदारी मैंने उठाया.
Totally and completely.
और पूरे रूप में समाप्त करके.
And it's finished.
और समाप्त कर दिया.
What else is finished?
और क्या पूरा किया?
Whatever the law demanded.
जो भी व्यवस्था मांगते हैं.
And it was so difficult.
Yes, बहुत कठिन.
There is not one man who lived who had not broken the laws of God.
संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति जिंदा रहा नहीं जो व्यवस्था को तोड़ा नहीं.
If you break one commandment,
एक व्यवस्था को तोड़ेंगे.
It is as good as breaking all the ten commandments.
सारे दस आज्ञाओं को तोड़ा जैसा.
And if you break the commandment of God,
यदि परमेश्वर का नियम को तोड़ा,
the only outcome of that is death.
उसका नतीजा मृत्यु है.
When you say death, what kind of death?
जब आप मृत्यु कहते हैं मतलब क्या है?
You mean you stop breathing?
क्या आपको श्वास नहीं मिलेगा?
And you go and get buried?
आपको दफन करेंगे?
That's not the meaning of death.
वो नहीं वचन भाई का.
It's the second death.
ये अलग प्रकार का.
You understand that? It's the second death.
ये दूसरा मृत्यु है.
First death was when you and I are separated from God.
पहला मृत्यु ये है जब आप और मैं परमेश्वर से दूर गए.
When I say you and I, what I mean is when sinner separated from God.
पापी मनुष्य परमेश्वर से दूर जाते हैं.
But the second death is
दूसरा मृत्यु.
When he is judged and sent into the lake of fire, that is the second.
दूसरा मृत्यु ये है जब उसको न्याय करेगा आग और गंधक से जलती हुई झील में डाला जाएगा.
You see how it comes now.
ये जो विचार किस प्रकार आगे बढ़ते हैं.
बट इट्स डन.
ये हो गया.
इट्स फिनिश्ड.
वो भी समाप्त.
नाउ द अदर वे नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग अवे गॉड गिव्स समथिंग.
परमेश्वर हमसे लेने के बदले हमको देता है.
व्हाट डज ही गिव यू?
हमें क्या दिया?
व्हाट डिड ही गिव यू? समबडी से
आपको क्या दिया यीशु मसीह के द्वारा?
हू सेड समथिंग? You did. Then say something. No? All right. Nobody said something. Holy Spirit, of course. Say it loud. Don't be afraid. It is the Holy Spirit that He has given you, and there could be no greater gift than the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा हमें दिया उससे बढ़कर का एक वरदान नहीं है.
He's given you as a gift.
पवित्र आत्मा को एक दान के रूप में.
And that too, what kind of a gift? That He might enter your heart. And live in you.
ऐसा एक दान दिया कि हमारे अंदर आकर रहे.
And when he enters your heart, you're born again.
और आप के अंदर आते हैं आप नया जन्म पाते हैं.
And therefore you become a child of God.
आप परमेश्वर का संतान बन जाते.
For about 250 years. Something. Have you not read that? When he gives you the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा आपको देता है.
He will be in you.
आपके अंदर रहेगा.
And you become a child of God.
परमेश्वर का संतान बनेगा.
By being born of the Spirit of God.
पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेगा.
Then I said you will live.
आप रहेंगे, जीवित रहेंगे.
How many years?
कितना साल?
250 years.
250 साल.
Yes or no?
No.
Then how long you going to live? How long you decide? How long you decide to live? Look at this gentleman, what he says. I tell you, this is very profound. He says, as long as God lives.
No.
tell me.
As long as the Lord decides.
As long as the Lord decides, brother, you're going to live as long as God lives.
आप परमेश्वर जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे.
And how long is God going to live?
परमेश्वर कब तक रहेंगे?
I told you just now. 250 years.
No.
Then what? Eternally. Eternally you'll be a child of God.
Shout. परमेश्वर का संतान के रूप में सनातन काल के रहेंगे.
Praise be to God. Happy or not? Are those who are wanting Hindi translation, are you happy? Where are you? I see you.
Hindi
में
अच्छा है, सही है. अरे वही बंद करेगा.
All right, doesn't matter. All right, doesn't matter. What a God we have. Okay.
इतना महान परमेश्वर.
Let's finish that. Another helper, another comforter. You got the word comfort coming twice in that passage. Let's leave that one.
यहाँ दो बार सहायक आते हैं, एक और सहायक. हमें वहां मिलता है.
Now come with me to the second, the third one.
तीसरा वचन
verse 27. Everybody read with me.
27, 27 पद.
Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you.
Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
Please read that in Hindi so that
family will read it also. मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरो.
Okay, neither be afraid, don't darna, don't be afraid.
आप नहीं डरना.
Fear not. That's what God is, the Lord Jesus Christ. Did you notice in the second time there was an increment of words?
यहाँ भी उसे दूसरी बातें हमने पढ़ा सलाह
but a deeper meaning.
कई शब्दों को देखा गहराई का मतलब देखा.
Now in the third reference that we've got.
अब यहाँ जो तीसरा जो हमारा reference है.
It has got an increment of words. Yes.
यहाँ भी ज़्यादा शब्दों को देखता.
But do you notice the distress? In verse 27,
लेकिन 27 में जो
distress
या जो परेशानी का जो शब्द है.
Okay, why would Christ say, I'm giving you peace?
क्यों यीशु मसीह बोलते हैं मैं शांति देता हूँ?
The kind of peace that I have,
जो शांति मुझ में है.
Because the Lord Jesus Christ, this is chapter 14, okay?
ये 14वां अध्याय है.
Look at the last line of chapter 14.
14वां अध्याय का अंतिम पद क्या है?
What? Last line, brother.
Arise. उठो यहाँ से चलें.
उठो. Arise. Let us go. Hence. Where were they?
कहाँ बड़ी आएंगे? उठे उठकर कहाँ जाएंगे?
No, no. Where were they?
अभी कहाँ है?
You do not know where. Do you know? You don't know where they. Verse chapter 14. Where it was happening?
चौदह अध्याय का घटना कहाँ घटी?
In chapter 13, I'll tell you. In chapter 13,
तेरहवां अध्याय में,
the Lord Jesus Christ met with his disciples,
अपने प्रेरितों के साथ यीशु मसीह,
including Judas,
यहूदा भी उसमें है,
in that upper room,
वो जो ऊपर का कमरे में,
then they had the Passover feast,
और वहाँ फसह का पर्व मनाया,
then by the time you come to verse 5 or 6, you've got Judas was filled with the demonic, with the devil, and he went out.
और पांच या छह पदों में पढ़ते हैं यहूदा आप शैतान की आत्मा से भर गए और भागे.
After that, what happened?
उसके बाद क्या होते हैं?
The Lord Jesus washed the feet of the disciples. You remember that?
शिष्यों का पाप यीशु मसीह धोते हैं.
Okay, after that, what happened?
उसके बाद क्या होता?
When he had finished, he started talking.
यीशु मसीह वो कर्म होने के बाद
chapter 13.
तेरहवां अध्याय.
You come into chapter 14.
आप चौदहवां.
He's talking to you words of comfort.
तसल्ली की बातें बोलते हैं.
Chapter 15.
पंद्रहवां अध्याय.
He's reiterating the fact that he says, my peace, the kind of peace I have, I give unto you.
और फिर से वो बातें कहते हैं कि मेरा जो शांति मैं आपको देता.
Chapter 16.
सौरभ अध्याय में.
He is now telling you once again everything about the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा के बारे में फिर से उनको याद दिला.
He will come.
वो आएंगे.
He will teach you all things.
पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा.
When you come to chapter 17.
सातवां अध्याय में आते हैं.
No, he stops talking to them.
यीशु मसीह बातचीत करना बंद करते हैं.
Now he is talking to somebody else.
आप किससे बात करते हैं?
Who is that? He's praying to
पिता से प्रार्थना.
Whole of chapter 17.
पूरा सत्रहवां अध्याय.
And 17 is over.
सत्रहवां अध्याय हो
गया. Soon after that.
अठारह अध्याय.
Where does he go?
किधर जाता है?
He goes down the staircase.
वो नीचे जाते हैं.
He goes along and crosses the brook Kidron.
Kidron valley को cross करते हैं.
And he goes on further with his three disciples.
और अपने
he goes on further. What you call it, to the Garden of Gethsemane.
Gethsemane के वाटिका में तीन शिष्यों को लेके जाते हैं.
Was that the end of the journey?
या उधर समाप्त हुआ?
What? No. नहीं. From Gethsemane he went to Golgotha.
Gethsemane वाटिका से.
Sorry. From Gethsemane he went to Gabbatha.
Gethsemane वाटिका से Gabbatha जाते हैं.
That is the judgment seat.
वहाँ न्यायासन.
And he stood before Pilate.
पिलातुस के सामने खड़ा
हो गया. And from Gabbatha he went to Golgotha.
और गबाथा से उसको गोलगोथा लेकर गया.
And there he went. He was put on a cross.
वहाँ उसको सूली पर लटका.
And that was the end of the 33.5 years of the Lord Jesus on earth.
यीशु मसीह का जो 33.5 साल का जिंदगी का समाप्ति वहाँ होता है.
After that,
उसके बाद,
he rose again.
जी उठा.
On the third day,
तीसरा दिन,
and 40 days later,
40 दिन के बाद,
he ascended up into heaven.
परमेश्वर स्वर्ग की ओर चले.
Now you tell me, what is the next item of the program?
आप क्या प्रोग्राम आगे होगा?
Prayer to the Father, sending the Comforter. Sending the Comforter.
No, I brought you to a certain point. No, he went from here to there to the grave. He rose again. He ascended up into heaven. What is the next item on the
program? में पहुंचने के बाद क्या प्रोग्राम है?
His coming again.
उसका दोबारा आगमन.
He has to come.
वो आना है.
Okay, and if he comes, we'll go up, meet with him. That's the end of beautiful story.
आएंगे, ले जाएंगे. ये कहानी समाप्त हो गई.
Okay. Now, having said that in brief,
ये मैं समाप्त
कर दिया. In verse 27,
ये जो 27 पद में,
peace I leave with you.
मैं तुम्हें शांति दिया जाए.
I want somebody to look at that verse carefully and tell me what kind of peace is that.
ये कौन सा शांति है?
What kind of peace?
किस प्रकार का शांति?
Yes, that's right.
Not as the world peace.
Yeah. Divine peace. Good to say that. Get the first word first. I give you peace. I leave with you my peace. Don't talk anymore. That's enough. You can write a whole book on that.
अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ.
What do you mean? You have a peace? Do you have a peace?
आपको शांति है?
You're standing here. You're sitting here. And in a few verses, you're going down the staircase.
और थोड़ी समय के अंदर आप नीचे जाएंगे.
Yeah, you're going down the staircase, and you'll never return.
और यहाँ वापस नहीं आएंगे.
From that point, you're going to the cross.
और आप आगे सूली की ओर जाएंगे.
And you are saying my peace.
आप बताते हैं कि मेरी शांति.
What kind of peace will you have at such a time?
आपने अंदर अभी किस प्रकार का शांति होगा?
You understand what I mean?
आपका समझ में आया?
He's coming to the very, very pinnacle of the problem of the suffering that he's going to have.
यीशु मसीह का जीवन का संकट का सबसे ऊपर वो आ रहा है.
He's coming to the point when the judgment of God is going to fall upon his head.
परमेश्वर का पूरा दंड उसके ऊपर गिरने वाला है.
He's coming to the point where all the plan of God's redemption is coming to a fulfillment.
परमेश्वर का छुटकारे का सारा प्रोग्राम कार्यक्रम समाप्त होने वाला है.
such a time,
ऐसे समय पर,
he is coming to a point where they are going to spit on his face again and again.
और बार-बार उसके मुंह पर थूकने वाला है.
They are going to pull the hairs from his cheek.
उनका बाल खींच कर निकालने वाला.
They are going to blindfold him.
उनको उनका आंखें बंद करने.
They are going to slap him and beat him.
उसको मारने वाला.
And they will say, now you prophesy. You are saying you are a prophet. You prophesy. Who beat you now?
उसका मजाक करने वाला है. मारेगा, बोलेगा, बोलो अभी कौन भविष्यवाणी.
And they scoffed at him.
वे उसका निंदा करते हैं.
And they were, he knew they were going to scoff.
ये सब ये जानते हैं.
He knew they were going to rip off the clothes from him.
उनका कपड़ा फाड़ेंगे.
And he knew that he's going to the Roman lectern there.
ये जो रोमी सेना के पास जाते हैं.
And he's going to go there.
वो जाएंगे.
And they are going to take him.
वे उसको पकड़ेंगे.
Tie his hands up.
उसका हाथों को बांध
दे. That pole that is there.
वो जो कंबा में लटका.
And they are going to get off with.
और वे उसको मारेंगे.
If it was the Jewish people.
यहूदी लोग हैं तो.
They will whip a man 39 times.
यदि यहूदी है तो उसको 39 बार मारेगा.
No, 40 times. But normally they whip a person 39 times.
यहूदी है तो 40 बार, लेकिन साधारण रूप में 39 पर कदम करते हैं.
Why do they do that?
क्यों ऐसा करते हैं?
Because if the man who's whipping makes a mistake and it is not 40, it's 41, he will be whipped to death.
यदि जिसने मारा वो 40 के जगह में 41 हो गया तो उसको सजा मिलेगा.
And
मारा उसको सजा.
But how will the Romans do it?
लेकिन रोमी लोग क्या करते हैं?
Those people, how will the Jewish people do it?
यहूदी लोग कैसा करते हैं?
They will whip him.
उसको मारेंगे
13 times.
13
बार. ओके. एंड देन दे स्टॉप.
और वहां बंद है.
एंड दिस मैन विल हैव अ रेस्ट.
और उसको थोड़ा विश्राम मिल जाए.
And maybe another person will take over.
दूसरा आएगा.
And another 13 times.
एक और बार 13 बार मारेगा.
And then he'll sit down and rest.
वो भी विश्राम करेंगे.
And all that time the Lord Jesus Christ would be writhing in pain.
ये सारा समय पर यीशु मसीह कोड़े का बाल सह के दर्द सह रहा था.
Then another 13 times.
और 13 बार.
And then by that time.
उतना होने पर
the person who's being whipped will usually get exhausted and fall down as if dead.
और जिसको मार रहा है वो इतना थक जाएगा, मरा जैसा गिर जाएगा.
The Lord Jesus Christ was conscious.
लेकिन यीशु मसीह बेहोश नहीं हो गया.
And they whipped him.
बार बार मारे.
They tore his back.
उनका छाती पूरा फाड़ा.
His back was a bleeding mass of torn flesh.
पूरा शरीर फट गया और लहू से भर गया.
Every part of him.
पूरा बॉडी.
And yet, as if that's not sufficient, they made him carry the cross.
और उसके अलावा उसके ऊपर सूली का वो सूली उसके ऊपर दे.
And then they took him.
और उसको ले गए.
And they nailed him.
उसको सूली पर लटका.
And they lifted up the cross and put it in the
ground. वो सूली उठाकर.
At such a time.
और उस प्रकार का समय
को he knew every step and all that is going to take.
ये सारी घटनाएं वो जानते हुए भी.
What did the Lord Jesus say?
यीशु मसीह क्या बोलते हैं?
Peace I leave with you.
मैं अपनी शांति तुम्हें
देता हूँ. Say the rest. My peace.
अपनी शांति तुम्हें देता हूँ.
The kind of peace that I have got now.
जो शांति मेरे अंदर अभी है.
My brothers and sisters, none of you have suffered like that.
प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह के समान हम ऐसे कोई भी सहा नहीं है.
None of us have. Our problems, even a little problem, seem so big.
हमारा छोटी सी समस्या बड़ा हमको लगता है.
When he was going to suffer so much, and the worst thing that is going to happen is the Father is going to turn his face away.
और सबसे बुरी बात ये है कि परमेश्वर पिता ने भी उनका मुंह फेर लिया.
He is going to do that.
वो करने वाला.
Can you imagine?
क्या आप अंदाज कर सकते
हैं? How he's feeling?
कितना विचार उसका अंदर होगा?
My peace.
तो भी बोलता है.
You mean to say, Lord Jesus, even when you went to the cross and you were hanging there, you had a peace?
आप पूछ सकता है, यीशु मसीह जब आप सूली पर था, उस समय भी आपके अंदर शांति था?
What kind of peace must it be when he speaks to the people and said, he speaks to the Father and said, Father, forgive them. They don't know what they're doing.
जब यीशु बोलते हैं सूली पर से, पिताजी इन्हें क्षमा करें क्योंकि वे नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं. कौन सा शांति उसके अंदर.
You see, at that time he should be feeling, it's because of you. You are the ones who caused all that kind of anger. There's no anger.
ऐसा वेदना के बीच में उसको लगना चाहिए, तुम्हारे वजह से मैं इतना कष्ट उठा रहा हूँ. वो गुस्सा आना चाहिए, लेकिन नहीं आया.
Turns to that thief.
वो जो चोर की ओर देखते हैं.
He says, today.
आज.
You will be with me in paradise.
आज तुम मेरे साथ अधोलोक में रहेंगे.
He turns to John.
यूहन्ना को बोलता है.
This is your mother.
ये तुम्हारा माँ है.
Mother.
माँ को बोलता
है. This is your son.
ये तुम्हारा बेटा है.
What words he used.
यीशु मसीह क्या शब्द इस्तेमाल
किया. What a peace he had.
कितनी शांति उसका हृदय में.
Until he said it is finished.
जब तक नहीं बोला कि समाप्त हो गया.
Until he said, Father, into your hands I commend my.
जब तक ये नहीं बोला कि पिता मेरा प्राण आपके हाथ में जाता हूँ.
Peace I leave with you.
मैं अपनी शांति देता
हूँ. I've been speaking on encouragement.
मैं आपको प्रोत्साहन की बातें बता
रहा था. I have been speaking on comfort.
मैं आपको तसल्ली की बातें बता
रहा था. What kind?
कौन सा प्रकार का?
This is the measurement.
ये है उसका नाप.
This is the kind of peace.
इस प्रकार का शांति है.
And comfort.
तसल्ली है.
My peace.
अपनी शांति.
I give unto you.
मैं आपको देता हूँ.
Have you got it or not?
क्या आपको मिला?
He has given it to you.
वो आपको दिया है.
He hasn't taken it back.
वो वापस नहीं लिया.
He has given it to you.
आपको दिया.
And then it's, he says there,
उसके बाद बोलते हैं,
not as the world gives, give I unto you.
जैसा संसार देता है ऐसा नहीं.
When the world gives, what kind of a peace does it give?
संसार कौन सा प्रकार का शांति देगा?
Temporary. That's the word I'm looking for. The world gives you a temporary peace.
संसार तात्कालिक शांति देता.
But when I give you,
लेकिन यीशु मसीह देते हैं,
आई विल गिव यू अ पीस दैट लास्ट फॉर इटर्निटी,
ऐसा शांति सनातन काल का शांति
दे, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल,
तुम्हारा मन व्याकुल ना हो,
नाइदर लेट इट बी अफ्रेड,
और डरना
नहीं। नाउ व्हाई डिड ही से अफ्रेड,
क्यों नहीं बोला कि नहीं डरना?
यू आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट यू गेट मोर आउट ऑफ द
वर्ड, आप सवाल करेंगे तो आपको जवाब ज्यादा मिलेगा।
रीड वर्स 30, एवरीबॉडी रीड,
30वां पद पढ़िए,
एंड आई विल नो लॉन्गर talk much with you,
for the ruler of this world
is coming. Who is the ruler of this world?
ये संसार का सरदार कौन है?
Satan.
वो शैतान
है. He is the god of this world. He is the ruler of this world. Even while he is hanging on the cross, even while he is in this room talking to them, he can sense Judas has left.
ये जो कमरे में यीशु मसीह शिष्यों से बात कर रहा है, यीशु मसीह समझते हैं यहूदा चले गया है,
and he's gone to them,
और वो दुश्मन के पास गए,
and they are gathering them,
और वे इकट्ठा हो गया है,
Satan is gathering his,
और शैतान उन लोगों को इकट्ठा कर रहा है,
and they make the move,
वे कार्य शुरू किया,
while he's there he is able to feel it and sense, they make the move and they are coming towards Gethsemane,
वो जो कमरे में बैठकर यीशु मसीह समझते हैं कि दुश्मन कार्य शुरू किया, वो आ रहा है,
and what does he say?
और ये कहा
मेरे मेरे वर्स 31
31 पद देखिए,
he says arise,
उठो,
come on everybody, arise, let us go from here,
उठो यहां से चलें,
did he say let us run,
क्या ऐसा बोला कि चलो भाग जाएंगे,
Satan is coming,
शैतान आ रहा है,
let's run,
हम भागेंगे,
find a hiding place,
किधर भी छिपेंगे,
no, no, what he meant was let us go and face them,
बोल रहा था चलो हम जाएंगे सामना करेंगे,
even when he went into the garden of Gethsemane all his disciples left, yes or no,
Gethsemane में गया यीशु मसीह के सारे शिष्य चले गए,
Peter was somewhere on the periphery there,
ये पतरस था उधर सामने
किधर, John was there, he went into the judgment hall,
यहू John था, यूहन्ना था,
but the Bible tells us they all forsook him,
लेकिन परमेश्वर का वचन हमें समझाते हैं शिष्य लोग सब चले गए,
he had nobody,
कोई नहीं था,
then when he was on the cross,
जब सूली पर था,
he said before that, he said in chapter 15 or 16, he says that I'm not alone,
एक जगह में यीशु मसीह बोलते हैं मैं अकेला नहीं,
my father is with me,
मेरा पिता मेरे साथ
है, but when he's on the cross,
वो सूली पर जब था,
there came a time, a point,
ऐसा एक समय आया,
when the father turned his face away,
पिता परमेश्वर ने मुंह फेर लिया,
can you get the feel of it,
क्या आप समझ सकते हैं,
the father turned his face
away, पिता ने अपना मुंह निकाल दिया,
he's got nothing left, nobody,
उनके साथ कोई नहीं है,
and yet the Lord Jesus knew that that's not the end,
तो भी यीशु मसीह जानते थे कि वो अंत नहीं है,
you see, come back now,
अभी वापस आइए,
to verse 1,
पहला पद में आइए,
let not your heart be troubled,
तुम्हारा मन व्याकुल ना हो,
you believe in God,
परमेश्वर पर विश्वास
रखो, believe also in me,
मुझ पर भी विश्वास रखो,
I will go, he says, I go to prepare a place for you, and if I go, I will come again.
मेरा पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है.
So, in the first time when he speaks these words, who's coming?
तो पहली बार जब यीशु मसीह बोलते हैं, कौन आते हैं?
Tell me. The Lord Jesus Christ. The second time when he speaks words of comfort like this in chapter 14, 15 and 16 and 17, who's coming?
जब 15वां 16वां पद में कौन आते हैं बोला
तो होली स्पिरिट
पवित्र आत्मा आते हैं
ऑलराइट इन चैप्टर 14 व्हेन यू कम टू 27 एंड ही स्पीक्स दोस वर्ड्स ऑफ कंफर्ट
27 में जब तसल्ली की बातें
हु इज कमिंग
वहां भी कौन आते हैं बोला
लुक एट वर्स 30
30वां पद में
आई विल नो लॉन्गर टॉक मच विद यू फॉर द रूलर of this
मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बात ना करूंगा
three times he says the same things and I told you the connection and three times over you've got different persons coming
अब तीन बार शांति की बातें तसल्ली की बातें करते हैं
it should go
तीनों बार आते हैं बोलते हैं
it should go backwards really
एक्चुअली पीछे की ओर जाना चाहिए
it should go like this
ऐसा पीछे की ओर
the devil is coming
शैतान संसार का
सर्वहारा था।
वो अपना गंदा काम करेगा।
That will be over.
वो कार्य पूरा होगा।
That is over.
जब वो पूरा होगा,
and I go to heaven.
मैं स्वर्ग जाऊंगा।
The next person will come.
और दूसरा व्यक्ति आएगा।
Who's that?
वो कौन है?
The Holy Spirit of
God. आत्मा आएगी।
And the church will be born.
कलीसिया का शुरुआत
होगा। Will be here for 2000 what any number of years.
2000 से अधिक साल रहेंगे कलीसिया।
When that is over,
और जब वो पूरा होगा,
वो आएंगे। The Lord Jesus
Christ. यीशु मसीह
आएंगे। You get my point?
आपको मालूम पड़ा?
Three parts here and it speaks of three different ones.
तीनों बार अलग-अलग व्यक्ति आने के बारे में कहते हैं।
In closing,
ये समाप्त करते हुए,
you like that word? I think when I say such words, you know, it's comforting to you.
उस शब्द आपको पसंद आता है?
First Thessalonians.
पहला तसलोनी
and we are going to look at chapter what now?
तसलोनी क्योंकि पहली पत्री
four first Thessalonians chapter 4 okay please read verse 18
अठारह पद इस प्रकार बात इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो
Okay, have I done the right thing or not? Is that right?
Yeah, English.
Somebody read it in English.
Therefore, comfort one another with these words.
That's right. That's right. I'm not able to get these pages are so, troubling me a lot. Now, therefore, comfort one another with these words. You got the word comfort?
इस प्रकार बातों से दूसरे को शांति दिया
Therefore, comfort one another with these words. Now, we've talked about comfort yesterday, day before.
तसल्ली की बातें या शांति की बातें?
We talked.
कई बार बताया.
Now, it is about God comforting us.
आप परमेश्वर में शांति देता है.
But now, it is about we comforting one another.
अब यहाँ लिखा है कि हम एक दूसरे को शांति देना.
Look at it. Therefore, comfort one another with these words.
एक इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें.
When you come across the word therefore,
जब कभी therefore या इस प्रकार लिखा है,
you must understand. You must try to find out what it is therefore.
ये इस प्रकार मतलब किस प्रकार पूछना है?
What when you say therefore? Actually, it's referring to all the words that has gone before.
इसका मतलब इसके पीछे जो कुछ लिखा है उन वचनों के आधार पर है.
Right. All the words that have come before that.
इसके पहले जो कुछ लिखा.
Therefore,
इस प्रकार.
Comfort one another.
In बात.
So what is it that is written before?
इसके पीछे क्या लिखा?
Verse 13.
तेरा पद.
I do not want you to be ignorant, brethren.
Hey, भाइयों, मैं नहीं चाहता तुम अज्ञात रहे.
Concerning those who have died,
जो सो गए हैं उसके बारे में.
Lest you sorrow as others who have no hope.
दूसरों के समान शोक न करो जिसको आशा नहीं.
What's the important word in verse 18?
18 पद का मुख्य वचन क्या है?
Comfort.
शांति दिया करो.
Comfort. All right. What are two important words in verse 13?
तेरा पद का मुख्य शब्द क्या है?
Sorrow and hope.
Shock और आशा.
So you've got three words here.
तीन शब्द हैं.
Number one. No. Wait. You bring comfort later. In verse 13, what have you got? You've got sorrow.
Shock है.
All right. And then you've got the last word, the third one. What is it?
Comfort.
शांति है अठारह पद में.
That is, somebody dies.
कोई भी मर गए.
And he says, you sorrow like anything.
आप बहुत ही दुखी हो जाते हैं.
Then suddenly that word sorrow is turned into comfort in verse 18.
लेकिन वो जो शौक है, वो शांति के रूप में बदल जाते
हैं. How did that miracle take place?
ये तेरा पद का शौक
प्रभु
शोक किस प्रकार शांति बन सकता
है? What's the middle word?
उसका बीच का शब्द क्या है?
It's because there is a hope.
बीच में एक शब्द है आशा.
What are you hoping for?
आपका आशा क्या है?
Verse 14.
चौदह बाब
रीड इट Come on, everybody. If we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who are asleep in Jesus. Read, brother.
यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर ने भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं, उसी के साथ ले आएगा।
यीशु मसीह में सो गए। What is the meaning of that? Those who sleep in Jesus.
What? यीशु मसीह में सो गए।
What is the meaning?
Believers.
Right?
सो गए मतलब क्या?
They died.
ये वचन का मतलब ये है कि वे जो मरा वे विश्वासी है, यीशु मसीह में विश्वास करके मर गए।
Now look at it carefully.
ये वचनों को ध्यान से
देखिए। These people who died in Christ, believers who die in Christ, where are they?
यीशु मसीह में मरा हुआ विश्वासी कहाँ है?
Look at that person, tell me.
ये वचन देखकर बताइए।
Where are they?
वो कहाँ है?
In the grave. No, not in the grave. Where are they?
ये वचन के अनुसार वो किधर है?
You see, look at that verse. For if we believe that
Jesus ध्यान से देखिए।
Died and rose again, even so God will bring with him.
उसी के साथ ले आएगा।
That's as simple as that.
मतलब
therefore, when you read the Bible, analyze, look at every word, this side, that side.
यीशु मसीह में जो सो गए हैं, वे यीशु मसीह के साथ हैं।
And they, he, you die in Christ, and you are with God.
और आप यीशु मसीह में मर जाते हो,
and
यीशु मसीह के साथ।
God will bring with him.
परमेश्वर उसको यीशु के साथ ले आएगा।
When?
कभी?
I don't understand.
When मुझे नहीं मालूम।
For this we say unto you, this thing we say unto you.
मैं आपको ये बताता हूँ।
For the Lord Himself, verse 16, will descend from heaven. The Lord Himself means Jesus Christ. Himself will descend from heaven.
16 पद में पढ़ते हैं क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा।
With a shout.
उस समय ले
With the voice of an archangel,
प्रधान दूत का
and the
शब्द
trump of God, and the dead
भूकेगा,
and the dead in Christ shall rise first.
जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी
उठेंगे. Then we who are sitting down here in the meeting tonight,
तब आज हम जो यहाँ बैठे हैं,
we will also rise and be caught up together with them to meet the Lord.
उठा लिया जाएगा कि हवा में प्रभु से मिले.
Is that clear?
ये clear है.
You see the sequence of events.
ये सारी घटनाएं बराबर समय है.
The trumpet sounds and he comes.
परमेश्वर का तुरही की आवाज.
This is what is going to happen.
ये घटना.
Dead in Christ shall rise.
जो यीशु मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे.
You see, there's a man called Serene, Harry Serene.
Harry Serene नाम एक आदमी था.
And he died some time ago.
कुछ समय पहले वो मर गया.
He was a non-Christian, a Hindu, but he became a believer, a very rich man.
वो एक हिंदू परिवार से विश्वास में आया.
This is in Delhi.
दिल्ली में हुआ.
And then what happened?
उसके बाद
क्या हुआ? He went to America.
अमेरिका में.
I met him there also.
मैं उसको वहाँ भी मिला.
Then after that I heard he died.
उसके बाद मैंने सुना कि वो मर गया.
What he told his daughter was,
उसका बेटी से ये कहा,
You take my ashes, cremate me, take my ashes.
मेरा जो मुझे जलाना और मुझे जो अंगार को लेना,
and you bury some here in America.
मुझे थोड़ा बहुत अमेरिका में दफन करना,
and take a little what your container full of my ashes and go to Delhi.
और मेरा जो अंगार है उसका थोड़ा बहुत दिल्ली में लेके
and bury it in Prithviraj Cemetery.
और वो जो पृथ्वीराज सेमेट्री में उसको वहां
and so they came and called for me and said this is what's happened, can you help us?
वे आकर मुझे फोन किया कि आप बोलो क्या करना है.
So I went with them and prayed with his daughter and everything and committed that his ashes to the grave.
और जो बेटी के साथ में प्रार्थना किया और जो अंगार को
so
दफन किया.
Listen to this, that is west.
जो अमेरिका है वो पश्चिम में है.
दिस इज ईस्ट
और ये पूर्व है.
सम ऑफ हिज एशेस आर देयर
और उसका कुछ अंगार जो है वो पश्चिम देश में है.
वी गॉट अ प्रॉब्लम हियर. And when Christ comes,
आएंगे,
the Bible says,
Bible कहते हैं,
and the dead in Christ shall rise first.
जो यीशु मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे.
हारी, where are you?
इधर है यीशु पूछेगा.
You know, this side or that side?
और पूर्व में है पश्चिम में.
Some others have been eaten by worms.
किसी को कीड़ा खाया है.
Some others have been eaten by fish.
और किसी को मछली खाया है.
Some others have disappeared somewhere.
और किसी ने ऐसे ही गायब हो गया.
My goodness, I don't care how they die. I don't care what happened to their ashes.
वे कैसा मरा, कैसा दफनाया, क्या जैसा जलाया.
हारी
कुछ बात नहीं है.
हारी शरीन.
जब हारी शरीन
will come together.
एक साथ यीशु मसीह के
सामने
आप और मैं भी मर
जाएं, you will rise again.
ये हम जी उठेंगे.
And if you have not died, you will be caught up to meet the Lord in the air together with them.
यदि आप मरा नहीं है, यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा, रूपांतर होगा.
Therefore,
इसलिए
comfort one another.
एक दूसरे को शांति दिया.
With these words,
ये वचनों से.
God bless you. Dear Borivali Assembly, as well as all the other brothers from other assemblies who have come, and thank you for translating.
Borivali Assembly aur baki sabhi bhai logon ko main aabhaar.